इस भक्ति का आरंभ एक नए टॉपिक से करते हैं और टॉपिक का नाम है निर्मल सरिताओं के अपने अवरोध। निर्मल सरिताओं के अपने अवरोध। निर्मल अर्थात पवित्र, सरिता अर्थात नदी, अवरोध अर्थात विघ्न। निर्मल सरिताओं के अपने अवरोध। बहुत बहुत समय पहले एक बहुत सुंदर युवक राजकुमार था। वह राजकुमार एक दिन शिकार के लिए जंगल गया। जंगल में राह भटक गया और किसी दूसरे नगर में प्रवेश कर गया। दूसरे नगर में दूसरे राजा के महल में गया, उस राजा से मिला और उस राजा ने अपनी कन्या से उसे मिलाया जो कि बहुत रूपवती थी। तो यह युवक राजा, यह राजकुमार मोहित हो गया, बहुत आकर्षण हुआ उसे उसका। और उस राजकुमारी से उसने कहा कि मुझे तुमसे विवाह करना है। परंतु वो जो राजकुमारी थी कोई साधारण राजकुमारी नहीं थी, ब्रह्मज्ञानी थी जिसने वेदों का अध्ययन किया था, जो सत्य क्या है, असत्य क्या है, नित्य क्या है, अनित्य क्या है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, इसको जानती थी। तो उसने कहा, राजन मैं तुमसे शादी जरूर करूंगी परंतु 15 दिन के बाद। वो राजकुमार बहुत खुश हो जाता है और चला जाता है, मन में स्वप्न देखते रहता है कि कब मेरी इस राजकुमारी से शादी हो। इधर राजकुमारी 15 दिन तक ऐसी कुछ दवाइयां खाती है जिसको लैक्सिटिव कहते हैं अंग्रेजी में, जिससे दस्त हो जाए, लूज मोशंस हो जाए। और जितनी उसको लूज मोशन होती है वो सारा स्टूल अलग अलग थैलियों में भर के रखती है और उस पर बहुत अच्छा मखमल का, सिल्क का कपड़े से उसको ढकती है। 15 दिन में वो राजकुमारी जो कि बहुत सुंदर थी, हड्डी मांस जैसे हो जाती है, गाल अंदर चले जाते हैं, हड्डियां दिखने लगती है, बिस्तर पर पड़ी हुई। राजकुमार आता है शादी करने, दासी उसे ले जाती है राजकुमारी के कमरे में। राजकुमारी को उस हालत में देखकर वो तो पहचानता ही नहीं कि ये कौन है। वो कहता है, राजकुमारी कहाँ है? दासी कहती है, यही है। वो राजकुमारी कहती है कि वो मैं ही हूं। परंतु वो राजकुमार कहता है, परंतु तुम ऐसे कैसे हो गई? वो कहती है कि मैं वही हूं, अगर तुम्हें मेरा सौंदर्य देखना है तो बाजू के कमरे में रखा है, जाकर देख कर आओ। राजा राजकुमार जाता है और कपड़े जो ढके हुए रहते हैं वहां पर उसको हटाकर देखता है। राजकुमारी कहती है, तुम जिसे सौंदर्य कहते हो वो यही है। परम वैराग्य का जन्म होता है उसके हृदय में। जो मोह था, जो देह का आकर्षण था, जो आसक्ति थी, जो सौंदर्य का भ्रम था मन में, समाप्त हो जाता है और सब कुछ छोड़कर वन की ओर सत्य की तलाश में चला जाता है। यदि वो स्त्री ज्ञानी न होती तो सच्चा सौंदर्य ज्ञान है, सच्चा सौंदर्य वैराग है, सच्चा सौंदर्य ब्रह्मचर्य है। चाहे कोई कितना भी हमारी ओर आकर्षित हो जाए, परंतु स्वयं प्रभावित होना या न होना ये हमारे हाथ में है। इस अखंड ब्रह्मचारिणी जीवन में, इस अखंड वैराग्य पूर्ण जीवन में, इस अखंड समर्पित जीवन में बहुत सारे विघ्न आते हैं, तो आज हम ऐसे जो विघ्न है उनकी चर्चा करेंगे। आप सभी निर्मल सरिताएं हो, पतित पावनी गंगाएं हो, सारे विश्व को ज्ञान सुनाने वाली हो, परंतु ऐसी जो हम सब निर्मल गंगाएं हैं, हमारे भी कुछ अवरोध है, कुछ विघ्न है, कुछ समस्याएं हैं, कुछ बाधा है। वो जब आ जाते हैं तो सारा ज्ञान योग एक तरफ रह जाता है। तो ऐसे सात विघ्नों की, अवरोधों की चर्चा हम करेंगे। सबसे पहला शारीरिक, शारीरिक में शरीर की बीमारी एक, शारीरिक में शरीर की कमजोरी दो, शारीरिक में बुढ़ापा तीन। योग करना चाहते हैं परंतु कमजोरी लगती है, योग करना चाहते हैं परंतु कोई ना कोई बीमारी है, योग करना चाहते हैं परंतु उम्र आगे आगे बढ़ रही है, अब वो एनर्जी नहीं रही जब 20 साल के थे, वो फुर्ती नहीं रही। करना तो बहुत चाहते हैं परंतु शरीर भी परिवर्तन हो रहा है, ये भी एक जैसे अवरोध है। कमजोरी, यदि ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो ढूंढना है पहले तो क्या कारण है। क्या कोई ऐसा कारण है जो ठीक हो सकता है? अगर हो सकता है तो उसका इलाज कराना। हमने देखा है, हमारे पास बहनें आती है, 5 साल से तकलीफ है, कभी किसी को नहीं दिखाया, खुद ही सहन कर रही है, कर रही है, कर रही है, कर रही है, जबकि बीमारी छोटी सी थी जिसका इलाज हो सकता था। रोज हम अपनी ओपीडी में कम से कम 20 से 25 बहनों को देखते हैं रोज, केवल भारत की नहीं विश्व भर की। एक बहन को ब्रेस्ट कैंसर की गांठ थी, 5 साल तक उसने ध्यान ही नहीं दिया, जब हमारे पास आई तो ऑलरेडी स्टेज 3 पर थी, ऑपरेशन हो नहीं सकता था, रेडियोथेरेपी कीमोथेरेपी और 2 साल में शरीर छोड़ दिया, 40 साल उम्र। क्यों नहीं ध्यान दिया? सेवाएं बहुत है, टाइम ही नहीं है, व्यस्तता है, स्वयं के डॉक्टर, कल का टॉपिक याद है ना डॉक्टर्स का, फिजिशियन हील थाइसेल्फ, हे चिकित्सक, हम संसार का की चिकित्सा करने वाले हैं, तो टीचर टीच थाइसेल्फ, हीलर हील थाइसेल्फ, हे शिक्षिकाओ, पहले स्वयं को सिखाओ, पहले खुद का इलाज करो। यदि कमजोरी लगती है शरीर में, हो सकता है किसी विटामिन की कमी हो सकता है ब्लड टेस्ट में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस हो, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम कैल्शियम यूरिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। और हम सोच रहे हैं कि शायद हमारी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, इसके लिए कमजोरी लग रही है। हम सारा दोष अपनी मंशा पर दे रहे हैं, अपनी मानसिक स्थिति पर मानसिक स्थिति कारण नहीं है, शरीर का ही कारण है। तो शरीर की यदि बीमारी है, सबसे पहले एक तो खुद पढ़ना उसके बारे में, खुद डॉक्टरी नॉलेज बढ़ाना, अगर किसी के पास नहीं जाना है तो खुद ही, कोई बीमारी है, अल्सर है, गैस है, एसिडिटी है, या कुछ भी है, बहुत सारी किताबें अवेलेबल है, या जानकारी तो कहीं से भी मिल सकती है। नॉलेज बढ़ाना, इन्फॉर्मेशन प्राप्त करना, कमजोरी के कारण क्या क्या, कहीं थायराइड की बीमारी तो नहीं। अभी अभी एक गुजरात की बहन आई थी, 5 साल 6 साल से कमजोरी लगती है, हमेशा सोचती थी कि मैं दुखी हूं ना इसलिए कमजोरी है, पर बाद में पता चला थायराइड फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया 45, नॉर्मल थायराइड 5 होता है खाली, ये 45 लेवल पर डिप्रेशन होगा, कमजोरी होगा, शारीरिक थकावट होगी, थोड़ी सी सेवा करो थकान, ऐसा लगता है सोए रहो, अमृत वेले उठो तुरंत थकान, थोड़ा सा सेवा करो थकान, हो सकता है कोई शारीरिक समस्या है अनडायग्नोस्ड। तो पहला कारण है शारीरिक कमजोरी, कारण ढूंढो, नहीं ढूंढ पा रहे हैं किसी ज्ञानी व्यक्ति के पास जाओ, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, एलोपैथिक के पास नहीं जाना है, दूसरे पैथी के बहुत सारे हैं, उनसे राय तो ले सकते हैं, चलो इलाज कराना नहीं कराना दूसरी बात है। कईयों का विश्वास ही नहीं होता है, परंतु डायग्नोसिस, तो पहला है शारीरिक कमजोरी, दूसरा है बीमारी। यदि कोई बीमारी है और हमको पता है, तुरंत उसका इलाज चालू करना, ऐसे नहीं कि उसको छोड़ दिया और वो बढ़ती जाए और जब बहुत ज्यादा हो जाए। हमारे पास बहनें आती है, कहती है गैस का प्रॉब्लम है बहुत समय से, इंडोस्कोपी कराते तो पता चलता है ऊपर से लेकर नीचे तक पेट तक पूरा सूजन, सीवियर इसोफेजाइटिस, सीवियर गैस्ट्राइटिस, सीवियर, जिसमें बस अल्सर होने ही वाला है। हम उनसे पूछते हैं आपने अभी तक ये किया क्यों नहीं किसी से, वो कहते बस ऐसे ही चला रहे थे, जब अल्सर हो जाए और वो अगर फट जाए तो ऑपरेशन करना पड़ता है फिर। तो ये एक बहुत बड़ा विघ्न है, अगर बीमारी हो जाए तुरंत उसको ठीक करें। तीसरा, जिसे कोई रोक नहीं सकता, उम्र बढ़ती जाएगी, उम्र तो बढ़ती जाएगी, जो अभी फूर्ती है वो शायद 2 साल के बाद न रहे, इस जीवन के सत्य को स्वीकार करना है, और वो सब कुछ करना है जिससे हम स्वस्थ रहे। क्योंकि शरीर का विघ्न ऐसा है कि अगर हम बीमार ही पड़ गए तो योग भी गया, ज्ञान भी गया, सब गया, सेवा तो गई, सेवा का तो सवाल ही नहीं है, सब गया। इसके लिए पहला विघ्न जो है इस जीवन में वो है शारीरिक, शरीर को समझना है, अपने शरीर की प्रकृति को समझना है, स्टडी योर ओन बॉडी, कब थकावट आती है, कितनी उसकी क्षमता है, कैसे उसको स्वस्थ रखे, क्या हम खाते हैं, क्या हम पीते हैं। अगर बीमारी है भी तो उसका सही इलाज हो, वो कंट्रोल में रहे बीमारी। तो पहला विघ्न है शारीरिक, दूसरा विघ्न भावनात्मक विघ्न, इमोशनल ऑब्स्टेकल। फर्स्ट फिजिकल, सेकंड इमोशनल। ये जो जीवन है, तपती अग्नि का ये पथ है, इसमें बहुत कुछ सहन करना है, सामना करना है। यदि यहां पर सेंसिटिव नेचर रहा, छुईमुई देवी, सुना है इस देवी के बारे में, छुईमुई देवी, फीलिंग देवी, सेंसिटिव देवी, किसी ने कुछ कह दिया उदास, नाराज, दो दिन मुंह लटकाए हुए, फिर कहेंगे इससे तो घर पे अच्छी थी। ओखली में सिर दिया है तो मूसलों को सहन करना पड़ेगा, ये यज्ञ ओखली है, सर दिया है ना इसमें, ये सेंटर ओखली है, सर दिया है ना इसमें, ये समर्पित जीवन ओखली है, तो इसमें हमको सब कुछ सहन करना पड़ेगा। यहां सेंसिटिव होकर नहीं चलेगा, नाजुक होकर नहीं चलेगा, शक्तिशाली बनना पड़ेगा, सब कुछ सहन करना पड़ेगा। किसी ने कुछ कह दिया उदास, किसी ने कुछ कह दिया मूड ऑफ, उदासी, मूड ऑफ। एक बहन हमारी ओपीडी में आई थी, कहती थी मुझे रोना आता है, कोई दवाई हो तो दो। हमने कहा कितनी बार, उसने कहा दिन में 20 बार। क्यों? बहन जी ने कुछ कह दिया रोना, कुछ कह दिया ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों, वैसा करना चाहिए था, रोना। भोजन बनाया, किसी ने कह दिया इसमें नमक कम, रोना। हर चीज में रोना, कुछ भी हो गया कमरे में बैठ के रोना चालू, तकिया में सिर घुसा के। अव्यक्त महावाक्य है, सभी लिख लो। योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो, योग की धूप से आंसुओं की टंकी को सुखा दो। हमारी एक बहन कहती थी हमारी टंकी इतनी शक्तिशाली है कि योग की धूप भी उसे हमारे पास इटरनल स्टॉक है आंसुओं का। रोना शक्तिशाली आत्मा की निशानी है या कमजोर? किसी ने कुछ कह दिया, बात बात पे मूड ऑफ, अपसेट, नाराज, नाखुश, अप्रसन्न, दो दिन तक बात ही नहीं करेंगे। जो सामने वाला व्यक्ति को लगेगा पता नहीं क्या मैंने पाप कर दिया उसको कहकर, कोई कहने से भी डरता है उसको। बड़े जो कह रहे हैं सिखाने के लिए कह रहे हैं, अब उनका उद्देश्य ये नहीं है कि आपको दुखी कर दे, पर दुख लेने का ही स्वभाव है। सौरो एब्जॉर्प्शन इंग्लिश में शब्द है, सौरो जो होता है ना उसको एब्जॉर्ब कर लेते, जैसे वो स्पंज होता है ना, पानी में डालो तो पानी को खींचता है, वैसे आत्मा क्या करती है, दुख को ढूंढती है कहां से दुख मिले। 10 लोगों ने सुख दिया वो भूल गई, 11वें नंबर ने कुछ कहा बस उसको पकड़ लिया, ऐसा जबरदस्त पकड़ा, रात भर सोचते रहे उसके बारे में। 10 लोगों ने तारीफ की थी वो भूल गए, 11वें ने आकर कहा था कि तुम्हारी ये बात ठीक नहीं है, बस पकड़ लिया उसको और दुखी हो गए और नाराज हो गए। तो रोना शक्तिशाली आत्मा की निशानी नहीं है, ये अग्निपथ है, एकांगी मार्ग है, एकांगी पगदंडी है, एकला चालो रे। रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी, एक कविता है, एकला चालो रे, वॉक अलोन, अकेले चलना है यहां पर, कोई 10-12 को लेकर नहीं चलना है। अध्यात्म का मार्ग अकेले का है, अगर कोई सोचे मैं इसको साथी बनाऊं उसको साथी बनाऊं, द पाथ इज नैरो, जीसस क्राइस्ट ने लिखा है, कहा है ये जो मार्ग है बहुत ही नैरो है, बहुत कॉन्ट्रैक्टेड, अकेले चलना है इधर, प्रेम गली अति सांकरी, जामे दो ना समाए। कबीर कहता है ये जो प्रेम की गली है बहुत ही सांकरी है, छोटी है, पतली है, दो नहीं आ सकते इसमें, इस मार्ग में कोई साथी नहीं है, अकेले हम है, केवल बाबा है बस। इसके लिए स्वयं को अंदर से वज्र समान कठोर और शक्तिशाली बनाना है। वज्र का हृदय हो हमारा, छोटी मोटी बातों से अपसेट होने वाला नहीं, दुखी होने वाला नहीं, नाराज होने वाला नहीं, किसी ने धमकी दे दी तो डर गए, किसी स्टूडेंट ने कुछ कह दिया तो भय, पता चला कोई हमारे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहा है भय, सारा ज्ञान योग एक तरफ। तो भावनात्मक शक्तिशाली बनना है, इमोशनल इंटेलिजेंस जिसको कहते हैं, इमोशनली इंटेलिजेंट बनना है, भावनात्मक होशियारी। भावना हमारी ऐसी ना हो, नारीपन का भाव ना हो, नारीत्व खत्म हो जाए, स्त्रीत्व जो है बाबा नहीं चाहता, ये स्त्रीत्व नारीत्व स्त्री फीमेलनेस जो है, बाबा अपने बच्चों को, बच्चियों को, दादियों को बच्चा बच्चा भी कहते थे बहुत बार, कम नहीं है वो पुरुष से। और हम सभी एडमिनिस्ट्रेटर्स है, हमको संभालना है, चलाना है दूसरों को, हम अगर कमजोर हो गए बात बात पर रोना, बात बात पर बाबा के कमरे में जाना आंसू बहाना, गए आंसू बहाए, बाबा की श्रीमत है कि मेरे सामने आके आंसू बहाओ, कहीं लिखा है आज तक किसी साकार अव्यक्त वाणी, कहीं डेट होगी तो बताओ कि जब दुखी हो जाओ तो आओ और बहुत आंसू बहाओ, बाबा ने ऐसा नहीं कहा है, कहा है यदि उदास हो जाओ तो कुटिया में आके बाप से रूरियान करो, रूरियान करने को कहा है, आंसू बहाने को नहीं। तो दूसरा विघ्न है भावन, भावनात्मक। तीसरा इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक। तीसरा विघ्न है इंटेलेक्चुअल ऑब्स्टेकल। हमारा एक स्वभाव है हमेशा कंपेयर करते रहते हम दूसरे बहनों के साथ, ये मेरे से थोड़ी ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये मेरे से ऐसी है, इसके पास कोई ज्यादा बुद्धि है, ये बोलती अच्छी है, इसका चर्निंग अच्छा है, इसके पास भाषण देने की कला है, ये कंडक्ट अच्छा करती है, इसमें एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है, ये लिखती अच्छा है, इसको टाइपिंग आती है, इसको गाड़ी चलानी आती है, इसको टू व्हीलर आती है, इसको फोर व्हीलर आती है, इसमें कलाएं बहुत है। हमारा एक दृष्टिकोण इंटेलेक्चुअल इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मराठी में कहते हैं न्यूनगंडता, हीन भावना, हीन ग्रंथि हिंदी में कहते हैं, हीन भावना, जबकि भगवान समान दे रहा है और हम क्या सोच रहे हैं अपने लिए, हीन भावना, हीनता की दृष्टि से कि ये लोग हैं, ये मेरे से अधिक पढ़ी लिखी है। हमने देखा एक बहन हमारे पास एडमिट थी, बहुत गहरा डिप्रेशन, बहुत समय तक एडमिट थे, बाद में पता चला ऐसी कोई बात ही नहीं है कि जिस वजह से वो दुखी है, सब कुछ अच्छा है, इतनी अच्छी है सब कुछ, बड़ी बहन तो इतनी उसको मां के समान पालना देती है, सब कुछ अच्छा है, परंतु फिर भी ये डिप्रेशन कैसा। हमने उनका स्पिरिचुअल काउंसलिंग सेशन किया, उसमें पता चला वो पांचवी तक पढ़ी थी, बाद में किस कारणवश पढ़ाई नहीं कर पाई और सेंटर पर जितनी बहनें हैं उससे ज्यादा पढ़ी लिखी है, सभी अच्छे हैं, सभी सेवा करते हैं साथ साथ, परंतु ये एक कंपैरिजन हमेशा खटकता है अंदर, कि मैं कम पढ़ी लिखी हूं, कम पढ़ी लिखी हूं, कम पढ़ी लिखी हूं। इंटेलेक्चुअल ऑब्स्टेकल है ये, हीन भावना, हीन ग्रंथि, इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स, न्यून गंडता। कहीं ऐसी कोई ग्रंथि हमारे अंदर तो नहीं? अगर ऐसी है तो उसको ठीक करना है। समान से, श्रेष्ठ संकल्प से। और आपको यदि लगता है किसी में कोई एक कला है और मुझ में नहीं है, तो प्रैक्टिस से, अभ्यास से हर कला को संपादित किया जा सकता है। प्रैक्टिस करो। लिखना नहीं आता, रोज लिखो। बोलना नहीं आता है, रोज आईने के सामने प्रैक्टिस करो। इस संसार के जितने महान स्पीकर्स हुए हैं, वो बचपन अगर देखा जाए उनको बोलना भी नहीं आता था, मुंह में पत्थर डालकर जोर जोर से समुद्र के पास जाकर चिल्लाते थे ताकि उच्चारण स्पष्ट हो। कोई बोल सकता है, हम बोल नहीं सकते, हमको डर लगता है पब्लिक के सामने जाने का। माइक हाथ में आते ही सारा कुछ भूल जाता है। यदि किस तरह का कोई भी इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स हमारे अंदर है, पहले तो सोचो कि कुछ है, नहीं है तो बहुत अच्छा, फिर इस विघ्न से पार। तो बौद्धिक ऑब्स्टेकल अगला है, कितने हो गए? तीन। चौथा सर्विस ऑब्स्टेकल इन सर्विस, सेवाओं में विघ्न। हम चाहते हैं कि सेवा बहुत बढ़े, पर कोई आत्मा है जो सेवा नहीं बढ़ने देती। हम चाहते हैं कि बहुत अच्छी सेवा करे, परंतु बढ़ती नहीं। अभी अभी एक अव्यक्त वाणी चली थी जिसमें बाबा ने 5 प्रश्न पूछे थे, पिछले संडे के पिछले संडे की एक 5 प्रश्न पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न था कि सेवा नहीं बढ़ती उसका कारण व्यक्ति है या वो जमीन, वो स्थान। तो बाबा ने बहुत सुंदर उत्तर दिया था, सबसे पहले तो जितने साधन है सारे के साधन सारे यूज करो, उससे भी अगर नहीं होता तो फिर समझना जमीन कलराटी है। दूसरा, यदि कोई समझता है मेरी ही कमजोरी है जिसकी वजह से सेवा नहीं बढ़ रही है, तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ जो ज्ञानी है, जो साथी सहयोगी है, उससे मदद लो और उस कमजोरी को मिटाओ। यदि सेवा में विघ्न है, अगर स्टडी की जाए गहराई से, तो एक ही कारण है, इंप्यूरिटी, और कोई कारण ही नहीं है। जरूर सेंटर पर पवित्रता का खंडन हो रहा है। पवित्रता की परिभाषा बहुत ऊंची और सूक्ष्म है। हमने देखा जिन सेंटरों पर बहुत अच्छी पवित्रता है, इतनी सेवाएं स्वतः ही होती रहती है, कहीं जाना नहीं पड़ता है। यदि विघ्न है तो पहला काम है प्यूरिटी को बढ़ाओ, धारणाओं को बढ़ाओ, अमृत वेले को शक्तिशाली करो, सेंटर का वातावरण शक्तिशाली करो, अपने स्टूडेंट्स पर ही काम करो, बाहर वालों से काम करने के ऊपर काम करने से ज्यादा जो है विद्यमान उनको और शक्तिशाली बनाओ और निश्चय बुद्धि बनाओ। तो सर्विस में यदि विघ्न है तो प्यूरिटी को बढ़ाना है, सर्विस में यदि विघ्न है तो योग भट्टियां रखनी है। बहुत बड़े लेवल पे योग भट्टी रखने की जरूरत नहीं, हर संडे एक योग भट्टी, हर संडे छोटी सी एक योग भट्टी, क्लास पूरा हो जाता है उसके बाद में आधे घंटे की योग भट्टी, शाम को वापस अगर स्टूडेंट्स आ सकते हैं तो वापस शाम को योग भट्टी। हमको ये नहीं चाहिए कि 100 लोग आ जाए और 500 लोग आ जाए और 1000 लोग आ जाए, हमको क्वालिटी आत्माएं चाहिए जो पक्के है एकदम निश्चय बुद्धि। हमने बाहर की तो आत्माओं की बहुत सेवा की है, परंतु जो अंदर है, जो पहले से है रेगुलर, उनको और पावरफुल बनाना है ताकि वो सेवाएं करे फिर। इसलिए सेवाओं में यदि विघ्न है तो चेक करो, और ये सब करने के बाद भी यदि विघ्न है तो बाबा के ऊपर छोड़ना है। एक बार दादी जानकी जब लंदन थी, जब बहुत कुछ सेंटर बना नहीं था वहां पे, 80s की बात है, तो सारी बहनें बैठकर एक बार योग कर रही थी। दादी ने पूछा क्यों योग कर रही हो, उन्होंने कहा कि सेंटर के लिए जमीन नहीं मिल रही है, उसके लिए योग कर रहे हैं। दादी ने कहा क्या टाइम वेस्ट कर रही हो, अपनी स्थिति बनाने के लिए योग करो, स्थान के लिए नहीं। तब कहा था दादी ने। इसलिए सबसे पहला कार्य अपने ऊपर करना है, स्टूडेंट के ऊपर करना है, अपने सेवा केंद्र के ऊपर करना है, तो बाहर की सेवा स्वतः ही पीछे पीछे आएगी। उस सेवाओं के पीछे एकदम पागल नहीं हो जाना है। चलो 1000 स्टूडेंट हो गए नेक्स्ट, और सारे ऐसे ही ढीले ढाले हैं, ऐसा हमको नहीं चाहिए। शक्तिशाली चाहिए, क्लास जो हो वो पावरफुल क्लास हो। तो ये भी एक विघ्न है। यदि मैं ही कारण हूं सेवाओं में, विघ्न मैं ही हूं, सेवाएं हो रही है पर मैं विघ्न बना बैठा हूं, ये भी ढूंढना है तो पीछे हट जाना है। यदि संगठन में सेवाएं चल रही है, सबको लग रहा है इस आत्मा की वजह से, परंतु उस आत्मा को यह पता ही नहीं, और यदि हमें कोई रियलाइज करा दे, उस समय नम्र भाव से पीछे हट जाना, सेवाओं को आगे जाने तो हम पीछे चले जाए, यदि मैं ही कारण हूं तो। अगला विघ्न आर्थिक, फाइनेंशियल, धन। हर सेवाओं में धन की आवश्यकता है, बिना धन के शायद ही कोई सेवा है मनसा सेवा छोड़कर जो हो सकती है। हर सेवाएं जो करते हैं, कोई भी प्रोग्राम करते हैं, उसमें धन की आवश्यकता होती है। परंतु एक सूक्ष्म बात हमेशा याद रखनी है। हमें एक बार दादी ने कहा था, जब हम दादी के पास बैठे थे, दादी ने कहा इन हाथों में करोड़ों आए और करोड़ों चले गए, मेरा कुछ भी नहीं है। एक बार दादी हॉस्पिटल में आई थी तो सभी भाई बहनों ने दादी के सेलिब्रेशन के लिए इतने गिफ्ट्स दिए दादी को, हर एक ने अपना नाम लिखा गिफ्ट के पास, ये गिफ्ट वो गिफ्ट, पैकिंग करके बहुत सारे अलग अलग गिफ्ट्स दिए। फिर हम दादी को शाम को ज्ञान सरोवर मिलने गए, दादी ज्ञान सरोवर रुके थे, तो देखा दादी वो सारे गिफ्ट विदेशियों को बांट रही है, मेरा कुछ भी नहीं। वो सारे जितने मिले, एक एक विदेशी आ रहा है, सबको बांट दिए। लोभ प्रवृत्ति, सूक्ष्म लोभ, सूक्ष्म लालच, सेवाएं करना है वीआईपीस की या बड़ों की या महत्वपूर्ण आत्माओं की, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं लोभ रहता है। इस लोभ को यदि हटा दिया जाए तो सारा पैसा चरणों में आके गिरेगा। इस लोभ के भाव को, इस स्वार्थ को यदि हटा दिया जाए, बस ये स्वार्थ ही, ये भावना ही विघ्न है, इसी के वजह से वो आ नहीं रहा है। क्योंकि जहां निस्वार्थ चित्त है, निर्लोभ ही चित्त है, वहां धन ना आए, ये हो सकता है? हमारा ही लोभ कारण है कि वो हमसे दूर जा रहा है। लक्ष्मी जिसके हृदय में नारायण है, तो लक्ष्मी कहां रहती है? हमेशा नारायण के पांव दबाते हुए दिखाती है। नारायण है तो लक्ष्मी को तो रहना ही है। यदि नारायण को ही हम दूर कर दे थोड़ा सा और उसमें लोभ बिठा दे, तो लक्ष्मी भी दूर हो जाएगी। इसके लिए हमने देखा है बहुत सारी बहनों को संपूर्ण निर्लोभी चित्त, और वो कहती है, एक बहन का बीच में फोन आया, किसी भाई ने 10 लाख रुपए का चेक दे दिया। वो बहन कह रही है मुझे नहीं चाहिए, हमारे पास इतना संपन्नता है, वो चेक पड़ा हुआ है, अब तक पड़ा हुआ है, क्योंकि चाहिए ही नहीं। परंतु वो भाव, भाई भी इतना भावना वाला है, व्हाइट चेक, ब्लैक वाला नहीं, स्वतः ही लाके डाल रहे हैं, कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं बहन जी को, सूक्ष्म भाव जैसे ही हटता है सब कुछ आना चालू हो जाता है अपने आप। धन की बहुत आवश्यकता है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि वही लक्ष्य है। और बार बार यदि किसी से धन की ही बातें करो तो वो स्टूडेंट धीरे धीरे दूर हटता जाता है, यह भी देखा गया है। परेशान हो जाता है, इरिटेट हो जाता है, बहन जी दिखे तो इधर से जाएगा, ऐसा भी देखा गया है। हमारी लौकिक बहन एक सेंटर पर थी तो वो बहन उसके पीछे ही पड़ गई मोबाइल के लिए, मोबाइल चाहिए। ऐसा नहीं कि मोबाइल नहीं है, है, अच्छा वाला। अगर कोई स्टूडेंट हम स्वतः ही अगर दे दे तो बहुत अच्छा है। ये यज्ञ ईश्वर का है, रुकने वाला नहीं है किसी व्यक्ति के लिए, किसी पैसे के लिए, अपने आप आ जाएगा, निश्चय की बात है, सब अपने आप यहां आएगा। इसके लिए ये भाव जो है सूक्ष्म, यदि है तो इसको कम करना या हटा देना। आर्थिक अगला विघ्न है एडमिनिस्ट्रेशन का विघ्न। इसमें दो भाग है, एक सेंटर, एक मधुबन। मधुबन से आने वाला विघ्न, अभी अभी अकाउंट्स करके आए हैं ना सभी, अभी जाने वाले हैं। अपना ज्ञान बढ़ाना है अकाउंट्स के बारे में, स्टैटिस्टिक्स के बारे में, चीजों को किस तरह रखा जाए उसके बारे में। ऐसा नहीं कोई दूसरा कर रहा है, हमें भी पता चाहिए, होशियार बनना है, स्मार्ट। नहीं तो एडमिनिस्ट्रेशन से विघ्न आएगा। जमीन, सेंटर, प्रॉपर्टी, वस्तु, गिफ्ट्स, ये सारे जो है इनका प्रॉपर अकाउंटिंग, खर्चा, एक्सपेंडिचर, सारी चीजें, सूक्ष्म सूक्ष्म छोटी छोटी चीजें, उसका हमें ज्ञान चाहिए। हम ये नहीं कहते ये तो हमारा है ही नहीं, हमने बचपन में कभी किया ही नहीं है, हमको बिल्कुल पसंद नहीं अकाउंट्स, स्टेटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, हमको तो किसी और चीज में इंटरेस्ट है, कला में, साहित्य में, बचपन से ही अच्छा नहीं लगता है। परंतु अभी इस जीवन में आए हैं, अगर ये ज्ञान नहीं है तो एडमिनिस्ट्रेशन से विघ्न आएगा। वैसा ही सेवा केंद्र, यदि सेवा केंद्र का एडमिनिस्ट्रेशन हमें पता नहीं, यहां की बातों को हमने जाना नहीं, समझा नहीं, तो बहुत सारे विघ्न यहां से भी आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन से। एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है इसको समझना है। भविष्य में द्वापर में जो राजनीति चालू होगी यहीं से चालू होगी, तो दोनों तरफ। मधुबन में और भी बहुत विघ्न है, आप लोग बहुत जानते हैं मधुबन से आने वाले विघ्न, या मधुबन में जाने के बाद कौन कौन से चीजों का सामना करना पड़ता है सब बता सकते हैं। सबसे पहला तो एकोमोडेशन, ट्रांसपोर्ट, टोली, कोई माता गुम हो गई तो मुश्किल है, ढूंढते रहो उसको। सीट, बहुत सारी चीजें हैं, टिकट्स, रिजर्वेशन। अचानक बीमारी, हाँ ये एक बहुत बड़ा है। हमने देखा है कि अचानक कोई माता एकदम से बीमार पड़ जाती है, उसका कोई नहीं है, उसको बहन को लेके आना पड़ता है, फिर जो बहन 50 की पार्टी को संभाल रही है, अब ये माता को कैसे छोड़े अकेले, इसको हार्ट अटैक, पैरालिसिस का अटैक, स्ट्रोक, तार कुछ भी, या कहीं से गिर गई तो इतनी हलचल में आ जाती है कुछ कुछ बहने। हाँ, ये एक बहुत और सूक्ष्म बात हमको बतानी है आपको कि वहां पर घबराना नहीं है, शांत रहना है। यदि अचानक पार्टी आप लेके गए यहां से 60 लोगों की, उसमें से एकदम से कोई बीमार पड़ गया, तो वहां पे प्रॉपर हमने देखा कुछ कुछ बहने इतनी स्टेबल रहती है, बराबर डॉक्टर से बात करेगी, डिसाइड करेगी अब क्या करना है, फोन नंबर लेगी, रिलेटिव्स को फोन करेगी, प्रॉपर उनको इन्फॉर्म करेगी, उनको बुलाएगी, अरेंज करेगी एक सेवाधारी के लिए उस माता के साथ, सारा कुछ, उधर का भी इधर का भी। और कुछ कुछ इतने डर जाते हैं क्या करना है उनको पता ही नहीं चलता है। पहले तो वो माता के घर वाले ना बोल रहे थे लेके आने के लिए, हमने जबरदस्ती कन्विंस किया कि चलो, हम लेके गए हमारी जिम्मेवारी पर, और उधर उसके साथ कुछ हो गया। ये सारे मधुबन में जाना, मतलब ये बहुत सारी चीजें, वहां तो चार धाम है, तपस्या है, वो तो है, पर ये भी है, तो ये भी ध्यान रखना है, ये भी विघ्न आ सकते। अगला विघ्न कितने हो गए, 6, 7वां, लौकिक परिवार, चाहे ज्ञान में हो या ना हो, लौकिक परिवार। लौकिक परिवार का कोई बीमार पड़ जाए तो इधर मन नहीं लगता है, उधर से फोन आए तो उधर की याद आती है, बार बार जाने की दिल करती है, फोन नहीं किए तो हलचल, रोज कोई कोई है रोज ही फोन करते हैं, इतना मोह, इतना आकर्षण, अभी तक गया नहीं है। और कुछ कुछ बहनें ऐसी हमने देखी है कि माताजी साथ में है पर पता भी नहीं चलता ये इसकी मां है, उनको उसी नाम से पुकारेगी, मम्मी मां ये नहीं, माताजी, सरनेम के साथ या नाम के साथ माताजी, उनकी लौकिक बेटी, बहुत डिटैचमेंट, ऐसा भी देखा है। और दूसरी तरफ वो भी देखा है कि मम्मी मम्मी करने वाली, इंग्लिश में 3 वाक्य है, वो आप लिख के रखो, कट द ब्रिजेस, पुल को काट दो। आर्मी में एक नियम है, यदि ये एक पहाड़ है और ये एक पहाड़ है, बीच में खाई है यहां पर, ठीक है, इस खाई से उधर जाना है तो एक पुल डाला जाता है, ऐसा पुल डाला तो सैनिक पुल के ऊपर से इधर जाते हैं, इधर जाने के बाद पुल को तोड़ देते हैं, काट देते ताकि उधर जाने का मोह ना हो, जिंकू कि वह मरू, इधर आ गए ना अब पीछे नहीं हटना है, कट द ब्रिजेस, एक बार इस जीवन में आ गए तो उस जीवन से, उस दुनिया से क्या लेना देना, कट द ब्रिजेस, कट कर दो तो ही यहां उन्नति हो सकती है, नहीं तो सारा ध्यान उधर ही। दूसरा, ड्राउन द बोट, ड्राउन द बोट अर्थात जो नाव है उसको डुबा दो, इस किनारे से उस किनारे से इस किनारे, जिस नाव में बैठ के आए हो इस किनारे में पहुंचते ही उस नाव को ही डुबा दो, ताकि उस नाव उस तरफ जाने का कोई संकल्प ना हो। ड्राउन द बोट, नैया को डुबो दो। तीसरा, थ्रो द लैडर, जिस सीढ़ी से चढ़कर ऊपर पहुंचे हो, ऊपर पहुंचने के बाद सीढ़ी को फेंक दो। संन्यासी जीवन है ये, तपस्वी जीवन है, वैरागी जीवन है, धधकता हुआ वैराग यहां चाहिए। अगर वही मोह है, वही आकर्षण है, वही वहां की, वहां का भोजन आकर्षित करता है, अब भी यहां का अच्छा नहीं लगता है, घर का भोजन अभी भी याद आता है, मां के हाथ का, किस किस को याद आता है, हाथ खड़ा करो। मां के हाथ का मिस होता है, याद आती है, आंसू आते हैं, वरण भात अब भी याद है, भूलता नहीं, कठोर वाक्य है, परंतु लिख कर रखो। यदि लौकिक घर का भोजन अब भी याद आता है तो एक दिन वो वहीं पहुंचा देगा जहां से आए थे। कट द ब्रिजेस, ड्राउन द बोट, थ्रो द लैडर। विघ्न वहां से बहुत आएंगे, चाहे किसी की बीमारी, सेवा तो करनी है उनकी भी, किसी की मृत्यु वो भी होगा, या फिर परेशान करेंगे, तंग करेंगे, सताएंगे, बुलाएंगे, बहुत कुछ करेंगे, बहुत सारे विघ्न वहां से भी आ सकते हैं, लौकिक परिवार से। उसको भी स्टडी करना है और हर एक के अपने अपने हो सकते हैं, इसके लिए जनरल आंसर नहीं दिया जा सकता है, परंतु इन लिस्ट तो बहुत बड़ी है, परंतु ये इसको यहीं रोकते हैं। तो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहला विघ्न शारीरिक में कमजोरी, बीमारी और बुढ़ापा। चौथा अगर ऐड करना है तो कर दो, मृत्यु, पर उसकी हमें क्या चिंता, जो हम जाने के बाद जो है वो सोचेंगे क्या करना है। तो पहला शारीरिक, दूसरा भावनात्मक इमोशनल, तीसरा इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, चौथा सर्विस में विघ्न, पांचवा फाइनेंशियल विघ्न आर्थिक, छठवा एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, और सातवा लौकिक परिवार। इन सातों विघ्नों के बारे में स्वयं अंतर्मुखी होकर सोचना कि मेरे जीवन में इन सात में से कौन सा है, और यदि है तो मैं इससे कैसे मुक्त हूं। किसी से मदद अगर लेनी है तो लो, पर इसी विघ्नों के साथ पूरा जीवन न बीत जाए। प्रॉब्लम है तो डायग्नोस इन टाइम, टाइमली डायग्नोसिस हो जाना चाहिए। ठीक है, अभी इसके बाद हम दूसरा क्लास लेंगे, 5 मिनट के ब्रेक के बाद। दूसरे क्लास का नाम है श्वेत वस्त्रों पर आलस्य के रंग, अलबेलेपन की सिलवटे। सिलवटे अर्थात क्रीज। श्वेत वस्त्रों पर आलस्य के रंग और अलबेलेपन की क्रीजेस। ओम शांति।